आ रहा है युगावतार प्रज्ञावतार, आ रहा है युगावतार प्रज्ञावतार। अक्टूबर 1978 में शांति कुंज में दिया प्रवचन। आज की समस्याएं, संकट हमारे ही द्वारा आमंत्रित। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संभवामि युगे युगे। देवियो भाइयो, जब वर्षा ऋतु आती है तब हमारे छप्पर अस्त व्यस्त हो जाते हैं,
खपरेल पानी पानी हो जाते हैं, मकान भीग जाते हैं और कच्चे मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, छतों को बंद करना पड़ता है, दीवारों की लिपाई पुताई करनी पड़ती है,
छप्परों को दोबारा छाना पड़ता है अस्त व्यस्त हो जाने के बाद।
गर्मियों में भी ऐसे ही होता है, गर्मियों में लू चलती है, तूफान आते हैं और घरों के छप्परों को तोड़ मरोड़ डालते हैं, खपरेलों को अस्त व्यस्त कर देते हैं।
बरसात आने से पहले किसान अपने अपने खपरेलों को संभाल लेते हैं।
टूटी हुई चीजों की मरम्मतें हमेशा की जाती हैं। जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है वह आदमी समझदार कहलाता है। टूटी हुई चीजें फेंकी नहीं जाती, टूटी हुई चीजों की मरम्मत की जाती है। मरम्मत न की जाए और पुराने कपड़े फेंक दिए जाएं, टूटे हुए बर्तन फेंक दिए जाएं, तो बात कैसे बन सकती है?
नहीं बन सकती,
मरम्मत करनी पड़ती है।
पुराने की मरम्मत, नया बनाना। मित्रों, वैसे ही संसार को बनाने वाले भगवान को अपनी इस दुनिया की मरम्मत करनी पड़ती है।
प्रकृति चक्र में हर चीज पुरानी और मैली हो जाती है। हमारा शरीर आज अच्छा खासा है, शाम को मैला कुचेला हो जाता है। घर आज ऐसा है, कल मैला कुचेला हो जाता है।
कपड़े आज धुले हुए पहने थे, कल मैले कुचेले हो जाते हैं। सृष्टि का नियम चक्र ही ऐसा है।
सृष्टि का नियम चक्र ही ऐसा विलक्षण है कि इसमें हर चीज मैली कुचेली होती रहती है,
टूट फूट होती रहती है,
विकृतियां आती रहती हैं और इन विकृतियों की बार बार मरम्मत करनी पड़ती है।
मरम्मत करना उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना किसी नई चीज का बनाना।
इस दुनिया की भी मरम्मत करनी पड़ती है। विकृतियों का क्रम न जाने क्यों बढ़ता हुआ चला जाता है और बिगड़ता हुआ चला जाता है।
इस बिगड़ती हुई और अस्त व्यस्त होती हुई दुनिया को संभालने के लिए इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टा बार बार जन्म लेता रहता है,
बार बार स्वयं भाग करके आता रहता है और साथ संभाल करके फिर वापस चला जाता है। अवतार इसी का नाम है।
बारंबार असंतुलन, बारंबार अवतार। मित्रों,
इस दुनिया में प्रायः बार बार असंतुलन होते रहते हैं। जब जब यह असंतुलन होते हैं तब तब सृष्टा को इस दुनिया को संभालने के लिए अपनी शक्तियों के साथ और अपने सहयोगियों के साथ स्वयं आना पड़ता है। भगवान ने गीता में आश्वासन दिया है और वचन दिया है और यह वचन सनातन है, शाश्वत है और बार बार सही साबित हुआ है।
बार बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभावि युगे युगे, विशिष्य विषमोष्ठम्।
युग युग में बार बार भगवान अवतार लिया करते हैं। कैसे अवतार लेते हैं और किस काम के लिए लेते हैं, शायद मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि अवतार किस तरह से लेते हैं। जिस प्रकार की चीजें होती हैं, जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के आप लोगों में से शायद कोई जानकार होंगे। हमारे शरीर में जो विष पैदा हो जाता है उनमें से ठीक उसी विष को दोबारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है।
इसके दोबारा शरीर में प्रवेश करने की वजह से रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने की वजह से मर्ज अच्छे हो जाते हैं, अर्थात विषस्य विषमोष्ठम्, यानी विष की औषध विष।
जिस तरह की विकृतियां इस संसार में आती रहती हैं, विकृतियों के उसी तरह के समाधान आते रहते हैं। जैसी बीमारी आती है दवा उसी तरह की आती है, युद्ध में जैसी आवश्यकता पड़ती है हथियार उसी तरह के सामने आ जाते हैं।
बंदूक के समय में बंदूक आई थी, लाठियों के समय में लाठियां आई थी,
तलवारों के जमाने में तलवारें आई थीं और तीरों के जमाने में तीर आए थे। आज एटम बमों का मुकाबला करने के लिए हाइड्रोजन बम आ गए।
सहयोग हेतु आए कच्छप। मित्रों,
जैसी चीजें सामने आती हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं, विकृतियों का समाधान करने के लिए निराकरण के साधन भी उसी के समान होते हैं। भगवान के अवतार इसी क्रम में होते रहे हैं।
भगवान के अवतारों की श्रृंखला को आप देखिए तो पाएंगे कि एक समय ऐसा था जबकि चारों ओर दरिद्रता छाई हुई थी।
उस दरिद्रता को दूर करने के लिए और संपन्नता उत्पन्न करने के लिए देवता और असुर आपस में विचार करने लगे कि आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय, आलस्य में पड़े रहने की बजाय क्यों न हम आपस में सहयोग करें, श्रम करें। अगर हम सहकार और श्रम का उपयोग करें तो हम संपन्न बन सकते हैं। दोनों ने जब निश्चय किया कि हम समुद्र में से संपदाएं निकालेंगे, तो भगवान ने कहा कि संसार में अभावों, गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए जब प्रयास हो रहे हैं तो इसमें हमारा सहयोग होना चाहिए। योगदान करने के लिए भगवान कच्छप के रूप में जाविराजे। कच्छप के रूप में अगर भगवान न मिलते, उनका सहयोग न मिलता, तो जो मंद्राचल पहाड़, जिससे समुद्र मथा गया था और जो पानी में ठहर नहीं सकता था, वह पाताल में चला जाता, गड्ढा हो जाता और उसका घूमना संभव न हो पाता।
इसको कील और धुरी की जरूरत थी, उसके लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। वराह ने उबारा लक्ष्मी को। साथियों,
बाद में हम देखते हैं कि समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी है, भगवान उसी रूप में आते रहे हैं।
भगवान के सारे 24 अवतारों का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन एक दो अवतारों का हवाला देकर के मैं आपको यह साबित करना चाहता हूँ कि भगवान को अवतार इस दृष्टि से लेने पड़े कि सामयिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मुनासिब रास्ता निकालें। एक बार ऐसा हुआ, एक राक्षस था, उसका नाम था हिरण्याक्ष।
उसने क्या किया? पुराणों की कथाओं के मुताबिक उसने दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर ली और समुद्र में चला गया और वहीं समुद्र में गड्ढा बना करके गाड़ाया। दुनिया में दौलत की कमी पड़ गई, लक्ष्मी की कमी पड़ गई।
भगवान ने कहा कि लक्ष्मी को समुद्र से निकालना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए?
उन्होंने वराह भगवान का रूप बनाया, जो समुद्र में भी चल सकते थे, पानी में भी चल सकते थे और जमीन पर भी चल सकते थे। वह दोनों तरीकों से गए और हिरण्याक्ष को मारा और अपने दोनों दांतों से जमीन को खोदकर दौलत निकाल लाए, जिसकी दुनिया को जरूरत थी।
नरसिंह का अवतरण। बेटे,
वराह भगवान के बाद बहुत से अवतार आते हैं। कौन कौन आते हैं?
एक का नाम था नरसिंह अवतार। नरसिंह कैसे थे?
एक राक्षस था, हिरण्यकश्यपु।
उसको यह वरदान प्राप्त था कि कोई आदमी उसे बंद स्थान में नहीं मार सकता, खुले में नहीं मार सकता, कोई आदमी हथियार से नहीं मार सकता, अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता, दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता।
उसने मारने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। तब भगवान ने इस तरह का अवतार लिया कि जिससे उस समस्या का समाधान करना संभव हो सके।
उन्होंने ऐसा रूप बनाया जो न इंसान का था, न हैवान का था।
उसका नाम था नरसिंह।
इस तरीके से वह ऐसे समय में प्रकट हुए जब न दिन था न रात थी। तब क्या था?
संध्या का समय था।
इस तरह वे देहरी में जा विराजे, जो न खुली जगह में थी और न बंद जगह में थी।
उन्होंने न अस्त्र का प्रयोग किया, न शस्त्र का किया, अपने नाखून का प्रयोग किया। नाखून से ही हिरण्यकश्यपु का पेट चीर डाला और इस समस्या का समाधान किया। परशुराम एवं राम। मित्रों,
जैसी समस्या होती है, भगवान उसी तरह के समाधान निकालते रहे हैं। दुनिया में जब बड़े ऑपरेशन करने की जरूरत हुई, जब मालूम पड़ा कि कैंसर का फोड़ा बिना ऑपरेशन के अच्छा नहीं हो सकता,
गला हुआ फोड़ा बिना ऑपरेशन के अच्छा नहीं हो सकता, तो उन्होंने परशुराम का रूप धारण किया। परशुराम के रूप में चाकू लेकर के वे काट छांट करते चले गए। यह उस समय की समस्या का निराकरण था। बाकी समय आते गए। एक समय आया जब भगवान ने अवतार लिया। किसका अवतार लिया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। तब लोग मर्यादाओं का पालन करना भूल गए थे, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे,
मर्यादाओं का मखौल उड़ा रहे थे और मर्यादाओं के नियम और कानून कायदे पर चलने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे।
तब भगवान ने उस जमाने में मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण किया।
बाद में लोग मर्यादाओं के कायल हो गए, जीवन का उन्हें अंग बना लिया।
पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण। भगवान रामचंद्र जी के बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया।
इस अवतार में क्या फर्क था?
इसमें फर्क था पूर्ण पुरुष का।
पूर्ण पुरुष कैसे हो सकता है? पूर्ण पुरुष ऐसे हो सकता है कि वह मर्यादाओं को दोनों तरीके से देखता है।
वह उद्देश्य को देखता है, साधनों को नहीं देखता।
उन्होंने अच्छे तरीके भी अख्तियार किए और बुरे तरीके भी अख्तियार किए, बुरे लोगों के साथ बुरे तरीके और अच्छे लोगों के साथ अच्छे तरीके। यह है पूर्ण पुरुष, जो सही तरीकों से भी उद्देश्य पूरा करता है और अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हीं के तरीके से भी उद्देश्य पूरा करता है।
यह है राजनीति और धर्मनीति का समन्वय। यह श्री कृष्ण का तरीका है, जो पूर्ण पुरुष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष संकट हेतु वैसे ही अवतार। मित्रों,
इस तरह भगवान के अवतार बार बार होते रहे हैं। आज के युग में फिर से भगवान के अवतार की आज की सामयिक समस्याओं के समाधान के हिसाब से आवश्यकता पड़ी। आज की सामयिक समस्याएं क्या हैं? आप बता सकते हैं। आज आदमी क्यों दुखी है? आप बता सकते हैं।
पुरानी परिस्थितियों से आज की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न हैं।
पुराने जमाने में राक्षस होते थे और ऋषियों को मार मार करके खा जाते थे, हड्डियों के पहाड़ जमा कर देते थे। आज है कोई ऐसा राक्षस जो आदमियों को खाता हो और हड्डियों के पहाड़ जमा करता हो? जानवरों को तो खाते हैं, पर आदमियों को कोई नहीं खाता।
पुराने जमाने की परिस्थितियां भिन्न थी जो आज नहीं है।
आज कंस कहाँ है,
दुर्योधन कहाँ है?
पहले आदमी हमलावर होते थे, हमलावरों की मारकाट करने के लिए भगवान को भी हमलावरों के तरीके से अवतार लेने पड़ते थे।
वे तलवार लेकर आते थे, लाठी लेकर आते थे, चक्र सुदर्शन लेकर आते थे, तीर कमान लेकर आते थे, पहने पहने दांत लेकर आते थे। उस समय जो हमले होते थे प्रत्यक्ष होते थे, उस जमाने के आक्रमणकर्ता उद्दंडों के रूप में सामने आते थे,
दुष्टों के रूप में, दुराचारियों के रूप में, राक्षसों के रूप में सामने दिखाई पड़ते थे।
सामने दिखाई पड़ने वाले ऐसे दुष्टों की मारकाट करने के लिए भगवान भी उसी रूप में आ जाते थे। आज भी अवतार जरूरी। मित्रों, हिरण्यकशिपु, महिषासुर, मधु कैटब, शुंभ, निशुंभ, रावण, कंस आदि सभी प्रत्यक्ष आते थे और सामने चैलेंज करते थे, और देवी दुर्गा हाथ में तलवार और भाला लेकर उन पर हावी हो जाती थी और सिंह पर सवार होकर मारकाट कर डालती थी।
उस जमाने में ये प्रत्यक्ष थे, इसलिए पिछले वाले अवतार जो कोई भी हुए हैं, वे सारे के सारे अवतार प्रत्यक्ष अवतार हुए हैं,
विध्वंस करने वाले हुए हैं, क्योंकि उस समय जो सत्ताएं अनीति फैलाती थी प्रत्यक्ष थी, मारकाट करने वाली थी, उद्धत थी, आक्रमण करने वाली थी, इसलिए भगवान को अब तक अवतार भी उसी तरीके से लेने पड़े।
आज भी अवतार की आवश्यकता है। आज अवतार की आवश्यकता क्यों है बेटे? आज अवतार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पुराने जमाने से आज की स्थिति और अधिक खराब है।
वह ज्यादा अच्छी नहीं है। आज की समस्या है परोक्ष और ज्यादा सूक्ष्म। मित्रों,
एक बीमारी वह होती है जिसमें चाकू मारा और घाव बना दिया। अब क्या होने वाला है? देखिए, हमारा बड़ा घाव बना दिया और खून निकल रहा है और हम मरने वाले हैं। दूसरी एक और तरह की शिकायत होती है, इसमें चेहरा ज्यों का त्यों बना रहता है पर फेफड़ों में टी बी के बैक्टीरिया वायरस समा जाते हैं और वे उसे धीरे धीरे खोखला करते चले जाते हैं और हम बराबर मौत के मुंह में घिसटते चले जाते हैं। अब आप भी मरेंगे और हम भी मरेंगे क्योंकि हमको टी बी के कीटाणुओं ने मार डाला है और हम खोखले हो गए हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। हम भी मर रहे हैं और आप भी मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? हम इसलिए मर रहे हैं कि हमारे जख्म हो गए हैं और देखिए, हमारी टांग टूट गई है और हमको सेप्टिक हो गया है और हमको टिटनेस की शिकायत हो गई है। दोनों में क्या फर्क पड़ा?
कुछ भी फर्क नहीं पड़ा।
एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। आज भी ठीक उसी प्रकार के संकट मनुष्य के सामने हैं जैसे प्राचीन काल में संकट थे, पर संकटों का स्वरूप अलग है। बाहर से हम ऐसे अच्छे खासे मालूम पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर बाजार में निकलते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर बहुत खुशहाली है, हमारे भीतर बहुत अच्छाई है। जब हम सिगरेट पीते हुए बाजार में या सिनेमा में जा बैठते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हम बड़े शानदार आदमी हैं। हमारे बराबर अच्छा और सुखी आदमी कोई नहीं हो सकता है।
शमशान का भूत आज का आदमी। लेकिन मित्रों,
आज के व्यक्ति का खोखा जब खुलकर देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि वह जलता हुआ आदमी है, शमशान के भूत की तरह है, जिसके लिए न कहीं मोहब्बत का सहारा रह गया है, न प्यार का सहारा रह गया है। आदमी मोहब्बत और प्यार से ही दुनिया में रहता हुआ चला जाता है, लेकिन आज किसी को किसी का भरोसा नहीं है,
किसी को विश्वास नहीं है कि हमको किसी का सहारा भी मिल सकता है।
बाप को भी यह विश्वास नहीं है कि जिस बेटे को पढ़ा करके इतना बड़ा कर दिया और जब उसकी छोटी बच्ची ब्याह शादी लायक होगी तो बेटा सहायता करेगा कि नहीं।
नहीं बेटे, सहायता की आशा अब नहीं करनी चाहिए।
माँ को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया,
अब इसकी बहू आएगी तो मुझे शांति और राहत दे सकेगी। अब आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए।
अब आपको बड़े भाई से आशा नहीं करनी चाहिए कि वह छोटे भाइयों की सहायता करेगा।
दिखावटी शिष्टाचार, आज की दोस्ती। मित्रों, अब दिखावटी शिष्टाचार ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब हर आदमी शिष्टाचार के शब्द थैंक यू वेरी मच के शब्द सीखता चला जा रहा है।
तोता रटंत के तरीके से आदमी के भीतर जाने क्या क्या बुखार और जाने क्या क्या जहर भरा पड़ा है, हम नहीं जानते। पुराने समय में दुश्मन सामने आते थे और हमला करते थे, लड़ाई करते थे, गाली गलौज करते थे और मारकाट करते थे। आज ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या होता है? आजकल का दुश्मन सामने से कभी नहीं आता। कहाँ से आता है? बगल में से आता है, पीठ पीछे से आता है और दोस्त की शक्ल बना करके आता है। आपकी जिंदगी में दुश्मनों से कोई जोखिम नहीं है। कोई दुश्मन आपको तंग करता हो तो पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, वह आपका कोई खास नुकसान नहीं कर सकेगा।
लेकिन आपकी जिंदगी में अगर तबाही होनी होगी तो एक ही आदमी के साथ, एक ही आदमी के माध्यम से होगी और उसका नाम है दोस्त। मेरा ख्याल है कि ऐसे दोस्त को दुश्मन कहना चाहिए।
हमारे अधिकांश बच्चे जो तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं, वे कैसे होते हैं, आप बता सकते हैं।
जो यह सारी की सारी आवारागर्दी का कसूर है, उसका एकमात्र कारण है दोस्त।
लड़कियों की जिंदगियां कौन खराब करते हैं?
दोस्त।
दोस्त से ज्यादा दुश्मन आज के जमाने में शायद ही कोई हो सकता है। अच्छा हो कि आप किसी से दोस्ती न करें, अपने काम से चुपचाप घर को जाएं, खेत को जाएं, बैठकर राम का नाम लें, चुपचाप सो जाएं। दोस्ती न करें तो ही अच्छा है। विश्वास नहीं रह गया।
तो महाराज जी,
क्या दोस्ती करना खराब है?
अरे बेटे, दोस्ती को मैं खराब कैसे कह सकता हूँ? प्यार को मैं खराब कैसे कहूँगा? मित्रता को मैं खराब कैसे कहूँगा?
मित्रता तो बहुत अच्छी बात है, सहयोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के जमाने में जिसमें आदमी के लिए हैरानी और परेशानी का ठिकाना नहीं है।
आज सारी दोस्ती खत्म, मित्रता खत्म, विश्वास खत्म और आदमी का चरित्र खत्म हो गया है।
आपके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आदमी का चरित्र गिरते गिरते आज कहाँ पहुँच गया है आपको मालूम है। अगर आपको यह जानना हो तो आप धर्मशाला में जाइए और बस एक थैला लेकर के जाइए और मैनेजर से कहिए कि हमको आज रात यहाँ ठहरना है। मैनेजर आपको सिर से पैर तक देखेगा और जब यह देखेगा कि आपके पास सामान तो कुछ है नहीं, तो कहेगा कि क्या बताए साहब, आजकल बड़ी भीड़ है,
सारी धर्मशाला भरी पड़ी है,
अब हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, आप पड़ोस वाली धर्मशाला में जाइए, शायद वहाँ जगह मिल जाएगी।
पड़ोस वाली धर्मशाला वाला भी यही कहता है कि अरे भाई साहब,
यहाँ जगह कहाँ से आई, बिल्कुल जगह नहीं है,
आप वहाँ जाइए, शक संदेह सभी जगह।
आप किसी भी धर्मशाला में जाइए, हर जगह आपको एक ही जवाब मिलेगा कि कोई जगह खाली नहीं है। आप चले जाइए, हम आपको जगह नहीं दे सकते। क्यों साहब, क्या वजह है?
अच्छा अब आप एक काम कीजिए, एक बिस्तर लीजिए, एक अटैची लीजिए।
अगर आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से दोनों मांग लीजिए और फिर दूसरे दिन बिस्तर और अटैची लेकर उस धर्मशाला में जाइए और कहिए कि भाई साहब,
जगह है। हाँ साहब, बिल्कुल खाली पड़ी है,
इस बरसात में तो कोई नहीं आया।
अरे लड़के, जरा इनके लिए ठहरने का इंतजाम कर देना।
क्या मतलब है इसका? यह कि आदमी की हैसियत उस हिसाब से है जिस हिसाब से आपके बिस्तर की कीमत है, अटैची की कीमत है। आदमी की कोई कीमत नहीं, आदमी का कोई विश्वास नहीं। हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हमको बराबर डर लगा रहता है कि यहाँ हमारी तिरपाल में पैसे रखे हैं, कहीं कोई चुरा न ले जाए।
घड़ी रखी है, कोई चुरा न ले जाए।
बीबी के बक्से में से सामान न निकाल ले जाए, उसके ऊपर बराबर शक बना रहता है। मेहमान को ठहराना तो पड़ता है, उसे कैसे भगा दें। लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं तो लड़कियों से कह जाते हैं, लड़कों से कह जाते हैं, औरत से कह जाते हैं कि घर में मेहमान ठहरा है, जरा ध्यान रखना कहीं कोई सामान न ले जाए।
घिनौना आज का इंसान। मित्रों, आज आदमी का विश्वास है।
नहीं, आदमी का विश्वास ही चला गया है।
आदमी का चरित्र और आदमी का विश्वास न जाने कौन ले गया।
आदमी की मोहब्बत न जाने कौन ले गया। आज आदमी इतना घिनौना और कमीना हो गया है, मैं कह नहीं सकता कि आज का आदमी जैसा घिनौना और कमीना हो गया है, वह किसी और जमाने में ऐसा हुआ होगा। वह पढ़ा लिखा हुआ है, ग्रेजुएट है, उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पर मैं यह कहता हूँ कि विश्वास की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से वह ऐसा वाहियात आदमी है कि इसके लिए वही ठीक है जैसा कि प्रत्येक दफ्तर के बाहर लिखा रहता है। प्रत्येक दफ्तर के बाहर क्या लिखा रहता है?
बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध, नो एडमिशन, बिना आज्ञा के प्रवेश मत कीजिए। एक शब्द और लिखा रहता है, नो वैकेंसी,
यहाँ कोई जगह खाली नहीं है।
किनके लिए नो वैकेंसी लिखा है?
इन बेहुदों के लिए। इनका नाम क्या है?
बेहुदे। बेहुदे आदमी हर जगह मारे मारे फिरते हैं, लात खाते फिरते हैं,
हर जगह रोते चिल्लाते फिरते हैं, हरामखोर। इंसानियत रह नहीं गई। हरामखोर कौन है? जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मशक्कत नहीं करना चाहते हैं और सफेदपोश बन करके पंखे के नीचे बैठकर गुजारा करना चाहते हैं, न पसीना बहाना चाहते हैं, न श्रम करना चाहते हैं और हराम का माल मारना चाहते हैं। दफ्तर में बैठेंगे, पंखे में बैठेंगे और बाबूजी बनेंगे, साहब जी बनेंगे।
नो वैकेंसी का जवाब ही इनके लिए ठीक है। इन्हें हटाइए, भगाइए, निकालिए।
हर जगह निकम्मे और बेकार आदमी, वाहियात आदमी और काहिल एवं जाहिल आदमी भरे हुए हैं।
अभी और गालियां इन्हें सुनाऊं?
आप सुनेंगे।
जहां देखो बेकार आदमी मारे मारे फिरते हैं।
आदमी न जाने कहां चला गया है। आज आदमी से आदमी हैरान है। बाहर वाला हैरान हो सो हो, घर वालों के नाक में भी दम है। औरत की नाक में दम है, बच्चे हो गए हैं, तो बेचारी सुहागिन भी नहीं रहना चाहती है और विधवा भी नहीं रहना चाहती है। दोनों तरफ से आफत आ गई है, गोदी में बच्चा है।
यदि बच्चा न होता तो तलाक देकर चली जाती।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि वह तलाक नहीं देती तो भीख मांगती और कुछ करती, पर आपके यहाँ नहीं रहती। बेचारी आपके यहाँ रह तो रही है, पर फांसी के तख्ते पर खड़ी हुई है।
क्यों?
क्योंकि इंसान है, आदमी जाहिल है, जिसके साथ में गले से कोई लड़की बांध तो दी गई है, पर किसी तरीके से रो झींक करके मौत के दिन पूरे कर रही है।
बेअकली ने मार डाला। मित्रों,
आपकी औरत को आपसे कोई संतोष नहीं है, आपके बाप को आपसे कोई संतोष नहीं, आपकी माँ को आपसे कोई संतोष नहीं, आपके भाई को आपसे कोई संतोष नहीं और आपकी बहन को आपसे कोई संतोष नहीं है, आपके बच्चों को आपसे कोई संतोष नहीं है। अरे यह कौन है?
आदमी है या भूत पलीत? मित्रों,
आदमी क्या होता चला जाता है?
आदमी भूत पलीत होता चला जाता है।
आदमी को जाने क्या हो गया है? आदमी का स्वभाव, आदमी की आदतें ऐसी वाहियात हो गई हैं कि उसने अपने कुल्हाड़े से अपनी ही टांगे काट डाली।
कैसे काट डाली?
उसने अपनी सेहत को इतनी बुरी तरह से तबाह कर डाला है जैसे कि दुनिया में आज तक इतनी बुरी सेहत हुई नहीं थी। बीमारियां जिस कदर इस जमाने में फैली हुई पाई जा सकती हैं, उतनी बीमारियां दुनिया के पर्दे पर जब से इंसान जमीन पर पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक नहीं थी। आदमी आज इतना कमजोर, इतना बीमार, इतना दुर्बल, रोगी और खोखला हो गया है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं था। क्यों साहब, क्या वजह हो गई?
आदमी की बेअकली ने उसे मार डाला।
गिरती सेहत, ऊपर से बहुप्रजनन।
मित्रों, मैं आपसे एक दिन बेअकली की बावत कह रहा था। आदमी की बेअकली ने उसकी सेहत को खत्म कर दिया, आदमी को खत्म कर दिया, आदमी की परिवार व्यवस्था को खत्म कर दिया,
आदमी की संतानों को खत्म कर दिया। आप संतानें पैदा कर लीजिए, आपको जितनी मुसीबतें उठानी हो उतनी संतानें पैदा कर लीजिए।
आपको अगर 100 मन मुसीबत उठानी हो तो एक संतान पैदा कीजिए और 200 मन उठानी हो तो 2 संतानें पैदा कीजिए। 300 मन उठानी हो तो 3 संतानें पैदा कीजिए। नहीं साहब, इससे हमारा वंश चलेगा। बेटे, वंश नहीं चलेगा, पिटाई होगी।
तेरी संतानें तेरी मूंछें उखाड़ेंगी और तेरे सिर के बालों पर जूते पड़ेंगे। नहीं महाराज जी,
मेरे यहाँ संतान हो जाए। जाहिल,
इससे इस जमाने में क्या हो जाएगा? आज के जमाने में जैसा हमारा चरित्र और व्यक्तित्व है, घर परिवार में जैसा वातावरण है, उसमें धल धल कर जो आदमी आने वाले हैं, वे कैसे आने वाले हैं?
ऐसे आने वाले हैं जैसे बिच्छू।
बिच्छू कैसे होते हैं? बेटे, बिच्छू ऐसे होते हैं कि जब वे अपनी माँ के पेट में से जन्म लेते हैं अंडे के रूप में, तो अंडे पेट में ही फूट जाते हैं और पेट में ही बच्चे बनने लगते हैं। फिर क्या करते हैं? खुराक में अपनी माँ का ही पेट खाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? जब वे पेट में रहते हैं तो अपनी माँ के पेट का सारा माल मसाला खा करके साफ कर देते हैं। जब माँ बिल्कुल खोखली हो जाती है और उसके भीतर के सारे कलपुर्जे खत्म हो जाते हैं और उसकी माँ का जो हिस्सा रह जाता है उसको छीलकर बाहर निकल आते हैं। इनका क्या नाम है?
बिच्छू।
हर जगह कंगाली।
मित्रों,
आज आपके घरों में कौन पैदा हो रहा है?
बिच्छू, आदमी बिच्छू है।
घरों को, परिवारों को जिन नए उम्र के लोगों से लाभ होना चाहिए था, वह लाभ नहीं हो रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है?
साहब, हमको तो दिखाई देता है।
आपको क्या दिखाई पड़ता है?
आपको हर जगह दरिद्रता दिखाई पड़ती है, कंगाली दिखाई पड़ती है।
दौलत बढ़ती चली जाती है मगर आदमी का असंतोष कंगाली की तरह फैलता चला जाता है। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति क्या करेगी?
गुरुजी,
हमारा तो दिवाला निकला चला जा रहा है। हम तो बड़े परेशान हैं, बहुत हैरान हैं।
हाँ बेटे, जरूर होगा हैरान।
अच्छा, कितना कमाता है?
गुरुजी,
आपको तो मालूम ही है कि क्या कमाता हूँ। कुल 650 रुपये मिलते हैं।
तुम लोग कितने सदस्य हो? हम हैं, हमारी बीबी है और 2 बच्चे हैं।
बेटे, 650 रुपये तो बहुत होते हैं। अरे महाराज जी,
इतने रुपये बहुत कैसे होते हैं? पहली तारीख को तो सारे घर का खर्च हो जाता है, फिर जाने कहां कहां से गुजारा करते हैं। हमने जिया है शानदार जीवन।
बेटे, तू हमारा हिसाब देख ले। 35 साल हमने गियामंडी के अखंड ज्योति कार्यालय में निकाले हैं।
35 साल के हिसाब के पर्चे हमारे पास रखे हैं। हर साल का एक एक पैसे का हिसाब हमने रखा है। 200 रुपये मासिक में हम और हमारी बीबी, 2 बच्चे और हमारी माँ, 5 आदमियों का खर्च आसानी से चल जाता था। 200 रुपये महीने में ऐसा बढ़िया शानदार तरीके से घर चलाया कि किसी ने आज तक अंदाजा नहीं लगाया कि हम गरीबी से जीवन जीते हैं कि कंगाली से जीवन जीते हैं। आपको तो पैसा खर्च करने के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए दरिद्रता और कंगाली बनी हुई है। दरिद्रता न ईमानदारी से पूरी होती है, न चोरी से पूरी होती है, न बेईमानी से पूरी होती है और न कर्ज लेने से पूरी होती है।
यह दरिद्रता किसी तरह पूरी नहीं होती।
दरिद्रता तो तब से है जब से तू पैदा हुआ था। यह तब से तेरे साथ आई थी और जब तक तू मौत के मुंह में चला जाएगा तब तक दरिद्रता तेरा पिंड नहीं छोड़ेगी।
क्यों?
क्योंकि तू पैसे का उपयोग ही नहीं जानता, केवल अपव्यय जानता है। आपने अपव्यय कहाँ देख लिया? बेटे, आदमी न मेहनत करता है, न परिश्रम करता है, न योग्यता बढ़ाता है, केवल अपव्यय बढ़ाता हुआ चला जाता है। इससे दरिद्रता नहीं बढ़ेगी क्या?
बढ़ेगी।
और क्या होगा? और क्या कह सकते हैं हम?
क्रमशः एक फिजा एक ही हवा हो अब अवतार।
इससे पूर्व इस महत्वपूर्ण उद्बोधन की प्रथम कड़ी में आपने पढ़ा कि पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान को भी समय समय पर इस दुनिया की मरम्मत करने आना पड़ता है।
उसी को कहा गया है संभवामी युगे युगे। बारंबार सृष्टि में असंतुलन हुआ, बार बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। कच्छप को समुद्र मंथन हेतु, वाराह को लक्ष्मी को उबारने हेतु, नरसिंह को उच्छृंखलता के निवारण हेतु, वामन को संकीर्णता मिटाने हेतु, परशुराम एवं राम को अनीति से जूझकर मर्यादाओं की स्थापना हेतु आना पड़ा। पूर्ण पुरुष श्रीकृष्ण नीति स्थापित करने आए। यही क्रम करुणावतार बुद्ध का था।
पर आज की समस्याएं पुराने सभी अवतारों के समय से कई गुना अधिक गंभीर है।
समस्या अधिक सूक्ष्म है, परोक्ष है।
आज का आदमी शमशान का भूत सा बनकर रह गया है।
अविश्वास छल छडम ही चारों ओर दिखाई देता है।
बहुप्रजनन से सेहत गिरती जा रही है।
व्यक्ति शारीरिक मानसिक दृष्टि से खोखला हो गया है। समष्टिगत कंगाली की चर्चा करते हुए गुरुवर ने बताया कि सीमित राशि में विश्वयुद्ध के दिनों से लेकर 1971 तक उनने कैसे घर चलाया।
आज का आम आदमी वैसा जीवन क्यों नहीं जी पा रहा? पूर्व के संदर्भ संक्षेप के बाद अब आगे पढ़ें।
आदमी आदमी को सुहाता नहीं। मित्रों,
आपने कभी देखा है कि आदमी के सामाजिक विग्रह किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं?
आदमी आदमी को कैसे खाता है? आदमी आदमी को कैसे चूसता है?
आदमी रिश्तेदार से लिपटकर उसका सफाया कैसे करता है? आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको ब्याह शादी के दिनों में दिखा दूंगा। दो समधी आपस में मिलते हैं और लाल रंग का सिंदूर एक दूसरे के माथे पर लगाते हैं,
फिर छाती से छाती मिलाते हैं। आइए साहब,
आप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, आपकी बेटी और हमारा बेटा। हाँ साहब, आइए हम दोनों छाती से छाती मिलाएंगे।
बेटे, इतिहास में भी एक बार छाती से छाती मिलाई गई थी। किसने मिलाई थी? एक थे शिवाजी और एक थे अफजल खां। अफजल खां ने कहा कि आइए भाई साहब,
हम छाती से छाती मिलाएंगे और दोनों दोस्त बन जाएंगे।
दोस्तों ने खूब छाती से छाती मिलाई। अफजल खां ने शिवाजी की पीठ पर छुरी घोंप दी।
शिवाजी ने भी बाद में हाथ में बगनखा पहनकर उसके कलेजे में भोंक दिया और सारी आंतें खींच डाली। नहीं साहब, यह तो बहुत बुरा हुआ और यह सब केवल इतिहास में पाया जाता है।
नहीं बेटे, चल हम तुझे रोज दिखा लावें।
इसका क्या नाम है?
इसका नाम है समधि, हत्यारी, डायन दहेज प्रथा।
समधि किसे कहते हैं? समधि उसे कहते हैं जो दूसरे वाले पक्ष की आंतें निकाल लेता है।
आंतें कौन निकाल लेता है? समधि
किसकी निकाल लेता है?
रिश्तेदार की।
जिसकी लड़की घर में आने वाली है, उस रिश्तेदार की, उस लड़की के भाई की, उस लड़की की माँ की आंतें निकाल लेता है। सारे के सारे घर को बर्बाद करके, तबाह करके चला जाता है। यह कौन है?
इसका नाम है राक्षस।
राक्षस कैसा होता है? राक्षस ऐसा होता है जैसे कि समधि होता है। समधि कैसा होता है? समधि ऐसा होता है जो दहेज के बिना शादी ब्याह नहीं कर सकता। इसका क्या नाम है?
इसका नाम है चांडाल। इसका नाम है पिशाच। इसका नाम है हत्यारा।
अभी और गालियां दूं? इसे अभी और गालियां देने दीजिए मुझे। बेटे, आप और हम में से ही वे आदमी हैं जालिम और जाहिल।
मैंने थोड़े ही दिन पहले यह कोशिश की थी कि दहेज प्रथा मिटाने के लिए प्रयत्न करूं।
अब हमारा गायत्री परिवार बहुत बड़ा हो गया है और इसके भीतर 10 लाख आदमी हैं। नोटे यह तत्कालीन आंकड़े हैं। सब बिरादरी के लोग हैं।
इनके आपस में ब्याह शादी का सिलसिला जमा दूं तो ज्यादा अच्छा है।
इसीलिए मैंने प्रयत्न किया था और दहेज विरोधी आंदोलन चलाया था और यह कहा था कि आइए हम आपकी लड़की का ब्याह शादी करा देंगे। अखंड ज्योति में भी छापा था कि आप अपने बच्चे बच्चियों की रिपोर्ट भेज दीजिए ताकि हम आपके लड़के लड़कियों के लिए अच्छे और मुनासिब लड़के लड़कियां तलाश कर सकें।
नासमझ दुष्ट चेले। फिर क्या परिणाम हुआ? 5,000 के करीब लड़कियों के फोटोग्राफ आ गए। उनके वर्णन हमारे पास आ गए कि लड़की 5 फुट 3 इंच की है।
गोरे रंग की है, बाल इतने लंबे हैं, वजन इतना है,
इंटरमीडिएट तक पढ़ी है, सबके सब डिटेल्स आ गए।
और लड़कों के?
लड़कों का सफाया,
लड़कों के मात्र 15-20 आवेदन आए और वे ऐसे थे कि जिनके बाप दादों के ब्याह नहीं हुए होंगे। इनमें से कोई लंगड़ा था, कोई काना था, कोई गूंगा था, कोई बहरा था,
किसी के 4-5 बच्चे थे,
कोई कैसा था कोई कैसा था।
ऐसे ही 10-20 पत्र ब्याह के लिए आए।
मैंने खुद कोशिश भी की और थोड़े से आदमियों की लड़कियों के ब्याह भी करा दिए।
गुरुजी, हमारी भी लड़कियां हैं। हाँ बेटे, हम देख लेंगे।
जैसे तू दहेज नहीं लेता है, ऐसे ही दूसरे आदमी भी मिल जाएंगे और हम तेरी लड़की का ब्याह करा देंगे।
उनके तो हमने लड़की के ब्याह शादी करा दिए, लेकिन जब उनसे पूछा कि भाई साहब, आपका लड़का भी बीए एमए पास है? नहीं गुरुजी।
आपका कहना तो ठीक है, पर हमारी मौसी नहीं मानती,
हमारा नाना नहीं मानता, हमारा ताऊ नहीं मानता, हमारा फूफा नहीं मानता।
लड़की की बात पर दहेज विरोधी।
मित्रों,
जब लड़के की बात आती है तब कोई नहीं मानता है, इसलिए इन चांदाल लोगों के, पिशाचों के बीच में हस्तक्षेप करना बेकार है। नहीं साहब,
हमारी लड़की के लिए लड़का बता दीजिए। नहीं बेटे, न मैं तेरी लड़की को लड़का बताऊंगा और न लड़के के लिए लड़की बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम हत्यारे हो, आपस में लड़ो, भेड़िए भेड़िए को खाएं।
मैं क्या कर सकता हूँ? जब लड़की का सवाल होता है तो हर आदमी दहेज विरोधी हो जाता है, और जब लड़के का सवाल आता है तो आदमी ऐसा पिशाच बन जाता है कि दांत और पंजे बाहर निकालकर आ जाता है और गुरुजी का मखौल उड़ाता है, हंसी उड़ाता है। मर हत्यारे, भाड़ में जा।
ज्यादा पढ़ा लिखा और खतरनाक। मित्रों,
क्या करना चाहिए? इससे कोई समस्या हल होगी? कोई समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि आदमी इतना बदमाश और इतना बदकार, इतना जाहिल और जालिम हो गया है कि मैं क्या कह सकता हूँ। यह कैसे हो गया?
आदमी के भीतर शैतान घुस गया।
तो क्या पढ़ाने से यह शैतानी दूर हो जाएगी?
नहीं बेटे, पढ़ाने से बढ़ेगी। आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी मुझे दिखाई पड़ता है, उसके अंदर मुझे शैतान और भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है।
जो आदमी कम पढ़ा लिखा है उसके तो नाखून और पंजे कम है, इसलिए वह कम शैतानी कर सकता है। उसके पास ताकत कम है, इसलिए हमले भी कम कर सकता है।
लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास समझ ज्यादा है और अकल ज्यादा है, वह दुनिया में तबाही ज्यादा करेगा। आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना अशांत, कितना विक्षुब्ध, कितना दुखी, कितना उद्विग्न जीवन बिता रहा है। रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं,
मरघट के भूत पिशाच जैसे जलते रहते हैं। आदमी भी हर समय 24 घंटे चिंता में अपने आप को जलाता रहता है। शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से आदमी की दुर्गति आज जितनी है, मैं सोचता हूँ इतिहास में ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई।
बाहर से आदमी लिफाफा बन बैठा है,
बढ़िया वाला पैंट पहनकर निकलता है, लेकिन आदमी के भीतर किस तरीके से हाहाकार मचा है। अगर आपको यह देखना हो तो कृपा करके आप अमेरिका चले जाइए और देखिए कि ट्रैंक्यूलाइजर की गोली खाए बिना आदमी को नींद नहीं आती।
क्यों? अशांति, टेंशन, तनाव आदमी को खाए जा रहा है।
शांति नहीं है,
हैवानियत की पराकाष्ठा। मित्रों,
हम लोग जिस सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, वैयक्तिक जीवन में रह रहे हैं, उसमें टेंशन के सिवा और क्या चीज हाथ आ सकती है?
असंतोष के अलावा, विक्षोभ के अलावा, रोष के अलावा क्या पल्ले पड़ने वाला है? क्रोध के अलावा क्या पल्ले पड़ने वाला है?
चैन कहाँ से आ जाएगा?
शांति कहाँ से आएगी?
नहीं साहब,
गायत्री माता से चैन आ जाएगा। अरे,
गायत्री माता से कैसे चैन आ जाएगा? बेटे, यह तेरा चैन, यह शांति कोई दूर करने वाला नहीं है। आज आदमी हैवान होता जाता है, शैतान होता चला जाता है। आज आदमी ने हैवानियत की मंजिल पार कर ली है और अब आदमी शैतान की चार दीवारी की ओर बढ़ता चला जाता है। मैं यह आज की परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ,
वैयक्तिक बात कर रहा हूँ, सामाजिक बात कर रहा हूँ।
आदमी के पास हर समय जहर तैयार है। आपको खुराक खानी हो तो आप हर जगह से जहर खाने के लिए जाइए।
आपको आटा खरीदना हो तो लकड़ी का बुरादा मिला हुआ खाइए। आपको लाल मिर्च खानी हो तो गेरू मिलाकर खाइए। आपको दूध की जरूरत हो तो ब्लॉटिंग पेपर की मलाई जमा हुआ और अरारोट मिला हुआ पानी पी लीजिए। इस जमाने से तो वह अच्छा था जो सेलखड़ी पानी में मिलाकर द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को पिला दिया था। लीजिए साहब, खड़िया पी लीजिए। ठीक है, तब खड़िया भी पियो थी, आज तो खड़िया भी आपको नहीं मिल सकती। आज हर चीज अशुद्ध है, बड़ी विषम है विभीषिका। मित्रों,
आज आदमी इतना अविश्वस्त और अप्रामाणिक हो गया है, और जिस समाज में अप्रामाणिक और अविश्वस्त व्यक्ति भरे पड़े हों, उस समाज में भला खुशहाली कैसे आएगी?
चैन कैसे आएगा? संतोष कैसे आएगा?
आदमी आज इस बुरी तरह से जल रहा है, जैसे कि मैंने सुना है कि राजा सगर के 60,000 बेटों को कपिल मुनि शाप दे दिया था, तो उसके कारण वे सब जल रहे थे, भुन रहे थे। भागीरथ ने तप किया था और गंगा जी को लाए थे, और गंगा जी को लाने के बाद में राजा सगर के जल रहे पुत्रों को मुक्ति दिलाई थी। प्राचीन काल के इतिहास से यह मालूम पड़ता है कि आज भारत माता के पुत्र, मानव जाति के पुत्र, मनु की संतानें इसी तरह से जल रही हैं, जैसे कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें मनुष्य तबाही की ओर जा रहा है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि दो दो लड़ाइयां हो चुकी हैं, दो महायुद्ध हो गए हैं और अब तीसरा हुआ तो दुनिया का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हथियार इतने जबरदस्त बने हैं, जो आज दुनिया में कहीं भी चला दिए गए तो एक हथियार दुनिया को समाप्त कर देने के लिए काफी है।
नागासाकी और हिरोशिमा पर दो छोटे छोटे बम गिराए गए हैं,
आज उनकी तुलना में 1,00,000 गुनी ताकत के बम बनकर तैयार है। यदि एक पागल आदमी बस एक बम चला दे तो मैं कहता हूँ कि कुछ आदमी तो वैसे ही मर जाएंगे, बाकी आदमियों के लिए हवा जहर बन जाएगी।
जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीले अनाज और जहरीले घास पात को खा करके आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तब सारी दुनिया के आदमी खत्म हो जाएंगे। ऐसी है विभीषिका। ठंडी आग, परोक्ष संकट। मित्रों,
विभीषिका अभी आई तो नहीं, पर सामने खड़ी है। एक तो गर्म आग है जो हथियारों के रूप में दिखाई पड़ती है, और एक ठंडी आग है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती।
ठंडी आग क्या है? ठंडी आग है बच्चों का अंधाधुंध पैदा होना, सेक्स के ऊपर नियंत्रण का अभाव।
आदमी बच्चे पैदा करता ही चला जा रहा है।
अरे,
इतने बच्चों का क्या होगा, बताना जरा। इसे गुणनक्रम के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखिए तो पता चलेगा कि इनका क्या होना है। एक आदमी के 5, 5 के 25 और 25 के कितने और कितने के कितने गुणनफल बनाते चले जाइए, और आप देखेंगे कि यही प्रक्रिया बच्चे पैदा करने की, औलाद पैदा करने की आदमी की हवस और बेअकली है। और यदि यह इसी क्रम से जिंदा रही तो आप देख लेना क्या परिणाम होता है। अभी तो स्कूलों में जगह नहीं मिलती, नौकरियों को आप जाने दीजिए।
फर्स्ट डिवीजन आपका बच्चा होगा तो कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और अगर थर्ड डिवीजन में होगा तो भाड़ में गिरे, जहन्नुम में जाए।
क्यों साहब, पढ़ेगा नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं और कोई गुंजाइश नहीं। नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं या पढ़ने के लिए? बेटे, मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और तू नौकरी के लिए चिल्लाता है। पढ़ने के लिए स्कूलों में तो क्या, सड़क पर भी जगह नहीं है, मुसाफिर खानों में जगह नहीं है, धर्मशालाओं में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं है, गाड़ियों में जगह नहीं है। यह कौन पैदा हो रहा है? कीड़े पैदा हो रहे हैं, जैसे कि मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियां पैदा होती हैं।
आदमी की बेअकली। मित्रों,
अनावश्यक बच्चे पैदा हो रहे हैं और आदमी की बेअकली दूर नहीं हो रही है।
बाप की आर्थिक स्थिति चौपट होती चली जा रही है और माँ की सेहत खत्म होती जा रही है।
बच्चों का भविष्य खत्म हुआ जा रहा है और समाज की व्यवस्था खत्म हुई जा रही है। सब कुछ खत्म होता हुआ जा रहा है, पर आदमी इस बेअकली से बाज नहीं आना चाहता। नहीं साहब,
हमारे तो बच्चा होना ही चाहिए और हमारे तो पोता होना ही चाहिए।
यह बेअकल जमाना न जाने कहाँ जाएगा। आ रही है दुनिया की तबाही।
मित्रों,
मुझे मालूम पड़ता है कि इस जमाने में विनाश प्रत्यक्ष तो नहीं आ रहा है, खुल्लम खुल्ला तो नहीं आ रहा है, दांत निकालते हुए तो नहीं आ रहा है, पर घुन के तरीके से जरूर आ रहा है, जो मनुष्य को खोखला करता चला जाता है, कलेजे को खाता चला जाता है। आज की परिस्थितियां आपको दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि यही क्रम जो आज सन 1978 में है, अगर इसको अभी और जिंदा रखा गया तो आप देख लेना 30 साल बाद दुनिया की तबाही कैसी होती है, 30 साल बाद दुनिया में क्या होता है, और दुनिया पर भगवान का कोप और भगवान की लानत किस तरीके से बरसती है। इस तरीके से लाखों आदमी जाने कहां से कहां चले जाएंगे, तब क्या होगा? भगवान के शाप बाढ़ के रूप में बरसेंगे, तूफान के रूप में बरसेंगे, आंधी के रूप में बरसेंगे, और किस रूप में बरसेंगे? आग के रूप में बरसेंगे, शोले के रूप में बरसेंगे, बुखार के रूप में बरसेंगे, मलेरिया के रूप में बरसेंगे।
अगर यही हालत रही तो आदमी के ऊपर तबाही बरसेगी, लानत बरसेगी। अगर आदमी ने अपने आप को सुधार न लिया तो मुश्किल हो जाएगी।
अवतार होगा अकलमंदी के रूप में।
मित्रों,
अभी मैंने आपको आज की परिस्थितियों का स्वरूप बताया, जो बाहर से चमक दमक भरी दिखाई पड़ती हैं और भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला, सब कुछ सर्वनाश, सब कुछ विनाश की आधारशिलाएं तैयार कर रही हैं। इसको ठीक करने के लिए भगवान किस रूप में आएंगे? आज की समस्या बेअकली की है।
बेअकली का निवारण करने के लिए कांटे को कांटे से निकाला जाएगा।
कुएं में डूबे हुए आदमी को निकालने के लिए कुएं में ही डूबना पड़ता है। कुएं में डूबे हुए आदमी को निकालिए। कैसे निकालेंगे?
झंडी दिखाए साहब,
कुएं में से उछलकर ऊपर आ जाए। नहीं साहब, ऐसे तो नहीं आ सकता।
फिर क्या करना पड़ेगा?
आप अपनी मर्जी से कुएं में गिरिए और डुबकी लगाइए और मुझे खींच कर ले जाइए।
मित्रों,
कांटा से कांटा निकलता है, जहर से जहर को मारा जाता है और बेअकली की दवा अकलमंदी से ही हो सकती है। बेटे, आपसे मैं वही कह रहा था कि अब की बार भगवान का अवतार किसी रूप में होगा, तो वह पुराने अवतारों से भिन्न होगा।
प्रज्ञावतार ऋषि होगा विवेक। मित्रों, बेअकली ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ती।
इस नए युग के अवतार भी ऐसे होंगे जिनको दिखाई पड़ने की जरूरत नहीं है।
अब की बार बिना दिखाई पड़ने वाले भगवान होंगे और निराकार वाले भगवान होंगे। उनका जो कार्यक्षेत्र होगा वह आदमी की समझ और आदमी की अकल के अंतर्गत होगा।
वे अकल के भीतर और समझ के भीतर काम करेंगे।
इन भगवान का नाम क्या होगा? इन अवतार का नाम क्या होगा? प्रज्ञावतार।
प्रज्ञावतार किसे कहते हैं? जिसको निष्कलंक अवतार कहा गया है।
कलंक से रहित।
कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में एक ही ऋषि है और उसका नाम है विवेक, और भगवान की एक ही सत्ता निष्कलंक है जिसका नाम है विवेक।
इसको न्याय कह लीजिए, इंसाफ कह लीजिए, औचित्य कह लीजिए, इसको आप प्रज्ञा कह लीजिए, बुद्धिमत्ता कह लीजिए,
जो कुछ भी नाम देना चाहें वह एक ही हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर जो अवतार होने वाला है उसको हम प्रज्ञावतार कह सकते हैं। प्रज्ञा किसको कहते हैं?
गायत्री को।
गायत्री मंत्र जिसकी हम उपासना करते हैं और जिसका हम विस्तार करते हैं और जिसे हम फैलाना चाहते हैं। अब की बार का हमारे युग का सबसे बड़ा अवतार जो अब होने वाला है गायत्री महाशक्ति के रूप में होगा।
इसको गायत्री महामंत्र को फैलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हलचल, नूतन उल्लास, सविता का प्रकाश। गुरुजी,
आप गायत्री मंत्र को फैलाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? बेटे, हम यह देखते हैं कि सवेरे जब सूरज निकलता है तो आपने भी देखा होगा कि प्रत्येक जागृत आत्मा अपना कुछ न कुछ कृत्य शुरू कर देते हैं।
चिड़ियां चहचहाना शुरू कर देती हैं, फुदकना शुरू कर देती हैं।
चिड़ियों को मालूम पड़ जाता है कि अब सवेरा होने वाला है, इसलिए खुशी जाहिर करती हैं और अपने भगवान की प्रार्थना शुरू कर देती हैं। हर जानवर अपनी हलचल, अपना काम शुरू कर देता है। ठंडी हवा बहना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हवा बंद हो तब भी सुबह के समय पर हवा चलना शुरू कर देती है, और कौन चलता है? बेटे, सुबह हर प्राणी चलते हैं। सवेरे पशु जाग जाते हैं और चल देते हैं, मनुष्य चल देते हैं, जानवर चल देते हैं, कोई भूख की वजह से, कोई काम की वजह से चल देते हैं, कोई खुशी की वजह से, कोई उत्साह की वजह से चल देते हैं। हमें दिखाई पड़ता है कि हर प्राणी में हलचल पैदा हो जाती है। वृक्ष में हलचल पैदा हो जाती है, पत्तों में हलचल पैदा हो जाती है, पत्तों में हलचल पैदा होती है। सवेरा होते होते फूल खिलने लगते हैं, और क्या होने लगता है? बेटे, संत और ऋषि इस समय में भगवान का अवतार करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, और क्या होता है? मुर्गा जंगल में चिल्लाता है, मुल्ला मस्जिद में और पंडित मंदिर में चिल्लाता है। हर जगह खुशी के दिन दिखाई पड़ते हैं और यह मालूम पड़ता है कि सवेरे के सूरज की आरती उतारने के लिए, सवेरे के सूरज की प्रशंसा करने के लिए हर जगह से हलचल पैदा हो गई है।
ऋतंभरा प्रज्ञा युग शक्ति का हो रहा अवतरण। मित्रों,
अब आप देख पाएंगे कि ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री महाशक्ति जिसको मैं युग शक्ति कहता हूँ, अब जबकि उदय होने वाली है तो आप सब लोगों में, खासतौर से जागृत आत्माओं में हलचल मची हुई है। आप सबको मैं जागृत आत्माएं कहता हूँ, और आपकी हलचलों के पीछे, आपके उत्साह के पीछे, आपकी श्रद्धा के पीछे, आपके त्याग और बलिदान के पीछे और आपकी गतिविधियों के पीछे मैं युग शक्ति गायत्री का उदय देखता हूँ। भगवान रामचंद्र जी जब संसार की सेवा करने के लिए, युग की सेवा करने के लिए चलने लगे, तब देवताओं ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे।
हाँ,
हम अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, जब अवतार आता है तो इसका श्रेय किसको मिला, किसको नहीं मिला, यह पीछे की बात है। परंतु अवतार एक फिजा के रूप में आता है, तूफान के रूप में आता है, आंदोलन के रूप में आता है, जिसमें लाखों लोग काम करते हैं।
ध्यान रखिए, एक आदमी अकेले अवतार नहीं लेता,
हजारों लाखों आदमी साथ साथ आते हैं।
रामचंद्र जी आए थे,
उनके साथ में देवताओं ने अनेक रूप बना बनाकर अवतार लिया था। कोई हनुमान बन गया था, कोई रीछ बन गया था, कोई लंगूर बन गया था, कोई गिलहरी बन गया था, कोई जटायु बन गया था।
सबने मिलकर भगवान के मिशन को आगे बढ़ाया था। जागृत आत्माएं श्री कृष्ण के साथ आईं। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान जब आए थे तो वे भी अकेले नहीं आए। उनके साथ में ढेरों आदमी आए थे। कौन कौन आए? 5 पांडव आए थे। 5 पांडव कौन थे? देवता थे।
किसे मालूम है? किसी को नहीं मालूम है
साहब।
ये 5 बच्चे कौन हैं?
अरे साहब, ये कोई बच्चे नहीं है, ये देवता हैं। देवताओं ने अवतार लेकर के हमारा रूप बना लिया है और हमारे आंगन में खेल रहे हैं, और वे भगवान के काम के लिए पैदा हुए हैं। 5 देवताओं को हमने बुला लिया है। ये मनुष्य नहीं है,
ये भगवान है महाराज जी।
और कौन आए थे बेटे? न जाने कितने थे जो ग्वाल बालों के रूप में आ गए थे, गोपियों के रूप में आ गए थे। जाने कितने आदमी इनके सहायक के रूप में आ गए थे।
ये कौन थे?
सहायक थे जो अवतार के सहायक के रूप में आए थे।
गांधी अकेले आए थे? अकेले नहीं आए थे, उनके साथ टीम आई थी। किसकी टीम थी? देवताओं की टीम थी, जिसने 1000 वर्ष की गुलामी का कलंक धोकर फेंक दिया।
वह एक टीम थी जो देवताओं के तरीके से साथ आई थी और उद्देश्य पूरा होने के बाद में चली गई।
समूह मन का प्रतीक है अवतार। भगवान बुद्ध के समय में अकेले एक बुद्ध नहीं आए थे, कितने बुद्ध आए थे? ढेरों बुद्ध आए थे।
हिंदुस्तान से लेकर सारे के सारे एशिया में और यूरोप में आप देखिए, कुमार जीव से लेकर कितने कितने बुद्ध हुए थे। एक को श्रेय मिल गया, इससे क्या हुआ? एक का फोटो छप गया, इससे क्या हुआ?
अरे साहब,
हमारा फोटो छप गया?
हाँ बेटे, भीड़ में से उछलकर जो कैमरे के सामने आ जाएगा उसी का फोटो छप जाएगा।
कौन दंगा मचा रहा था इस फोटो को देख करके बताइए।
अरे साहब,
यही था सामने वाला।
क्यों रे, दंगा क्यों मचा रहा था?
भाई साहब,
मैं तो सामने वाली लाइन में था इसलिए पकड़ में आ गया। सारी की सारी भीड़ खड़ी है, दंगे में सब लोग शामिल थे, तो फिर मेरा ही फोटो कैसे आ गया? मेरा तो क्या है, दुर्भाग्य कह लीजिए, जो गलती से या समझदारी से कैमरे के सामने आ गया, इसलिए मेरा नाम आ गया। असल में मेरे अकेले का काम नहीं है, सबका काम है।
स्वार्थ से उबरें मित्रों।
भगवान के अवतार जब कभी भी होते रहे हैं, एक टीम के रूप में होते रहे हैं। उस टीम में मैं आप लोगों को शामिल करता रहता हूँ। इस जमाने में आदमी के सामने स्वार्थपरता के अतिरिक्त दूसरा कोई सवाल नहीं है। मंदिरों में स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं है।
इतने सारे भगत लोग बैठे हुए हैं, पर ये महास्वार्थी हैं।
ये देवी के मंदिरों में बैठे हैं, ये सिर काटने के लिए और माल मारने के लिए बैठे हैं।
अरे
ये कोई भगत हैं, डाकू हैं। आप जहाँ कहीं भी जाइए, हर जगह आदमी को इतना स्वार्थी पाएंगे जिसके लिए न कोई देवी बाकी रह गई, न कोई देवता बाकी रह गया, न कोई संत बाकी रह गया, न कोई अवतार बाकी रह गया, न कोई ऋषि बाकी रह गया।
एक ही ऋषि बाकी रह गया जिसका नाम है स्वार्थ। स्वार्थ के अलावा दूसरी कोई बात हम सुनना ही नहीं चाहते। भजन,
भजन में तो और भी ज्यादा स्वार्थ है। सामान्य स्वार्थी को यह तब भी है कि हम यह चीज करेंगे तो यह पाएंगे, पर ये तो महास्वार्थी हैं।
महास्वार्थी ऐसे कि बिना कुछ किए सब पा जाएंगे, 11 माला जप करके ही सारा माल मसाला ले जाएंगे।
इस सारे जमाने में हम एक ही बात देखते हैं कि आदमी को स्वार्थ के अलावा दूसरी चीज न सुहाती है और न वह सुनना चाहता है। स्वार्थ के अलावा इन्हें किसी की खुशबू ही नहीं आती।
भगवान की इच्छा भक्त को पूरी करना चाहिए।
नहीं महाराज जी, भजन में जाते हैं।
अरे
कौन जाता है भजन में?
एकाद नाम तो बता।
भजन का मतलब तो समझते हैं नहीं, भजन करते हैं चालाक बेईमान।
बड़े आए भजन करने वाले।
तुम भजन करते हो,
भगवान को जानते हो, भगवान को क्या जानते हो बेटे? भगवान को दिया जाता है,
भगवान के आदर्शों को जीवन में धारण किया जाता है।
भगवान को अपने हुक्म पर नहीं चलाया जाता।
नहीं साहब,
भगवान को हमारी मर्जी पर चलना चाहिए।
चल बेहुदे कहीं के,
भगवान तेरी मर्जी पर चलेगा।
नहीं साहब,
भगवान को हमारी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। खबरदार, आइंदा ये शब्द कहा तो बड़ा आया मनोकामना वाला। भगवान की मनोकामना तुझे पूरी करनी चाहिए कि तेरी भगवान को करनी चाहिए?
नहीं साहब,
भगवान को मेरी मनोकामना पूरी करनी चाहिए।
बदमाश कहीं का, तेरी पूरी करनी चाहिए और तू भगवान की मनोकामना पूरी नहीं करेगा?
मैं क्यों करूंगा,
मैं तो अंगूठा दिखा दूंगा भगवान को।
ढूंढना है इस जमाने में आदमी को।
मित्रों,
आजकल हम देखते हैं कि अध्यात्म से लेकर हर चीज का पूरा सफाया हो गया है। आप लोगों में से मैं देखता हूं कि इस जमाने में आदमी न कहीं अध्यात्म में, न कहीं संसार में है। त्याग के नाम पर, बलिदान के नाम पर, सेवा के नाम पर, परोपकार के नाम पर, लोक सेवा के नाम पर, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, अपने लिए और अपनों की स्वार्थपूर्ति के लिए हर कोई लालायित रहता है और उसी उधेड़बुन में दिन घटाव रात लगा रहता है, किंतु लोकहित के लिए, जनकल्याण के लिए भला कौन जाना चाहता है। बादलों के तरीके से अपने को गला डालने के लिए कौन रजामंद होता है। हवा के तरीके से दरवाजे दरवाजे पर खुशबू पहुंचाने के लिए कौन तैयार रहता है। सूरज के तरीके से स्वयं गर्म रहने के लिए और दूसरों को रोशनी पहुंचाने के लिए कौन तैयार होता है।
चंद्रमा के तरीके से चांदनी बिखेरने के लिए कौन तैयार होता है।
कोई नहीं तैयार होता है। आज के जमाने में आदमी से हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह लोक मंगल के कामों के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए आगे आएगा। हनुमान जी का मंदिर तो बना देगा, लेकिन अपने पड़ोस के डहकी आदमी की सेवा करने के लिए रजामंद नहीं हो सकता।
अध्यात्म बन गया दिल लगी।
क्यों साहब,
हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाएगा।
हनुमान जी का मंदिर इसलिए बनाएगा कि इस जमाने में हनुमान जी की मठिया बना देंगे 800 रुपये की, तो उस जमाने में जब हम मरेंगे तो वह 80,000 रुपये
का फ्लैट हमको मिलेगा, इसलिए बनाता है बेईमान।
नहीं साहब,
ये मंदिर बनाता है।
नहीं बेटे, ये मंदिर नहीं बनाता है।
ये चालू आदमी है।
नहीं साहब, ये मंदिर में साड़ी चढ़ाता है।
अरे बेटे, ये साड़ी नहीं चढ़ाता है, ये अव्वल दर्जे का रिश्वतखोर है। 40-40 रुपये की साड़ी देकर के भगवान से न जाने क्या क्या लेना चाहता है।
बेटे, मैं क्या कह सकता हूँ, आजकल के जमाने में अध्यात्म केवल मखौल बनकर रह गया है। अध्यात्म केवल दिल्लगी रह गया है। अध्यात्म केवल जालसाजी रह गया है। इस जमाने में असली अध्यात्म, जिसके लिए आदमी को त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, अपने आप को परिष्कृत करना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, वही असली अध्यात्म है। मुझे मालूम पड़ता है कि जो ऋषियों का ज्ञान था फिर से जिंदा हो गया है। गायत्री माता अभी जिंदा हैं और गायत्री माता के साथ साथ में गायत्री माता के पुत्रों का समूह फिर से जिंदा हो गया है। आप लोगों को देखकर मुझे यह विश्वास हो जाता है। परिव्राजक अभियान के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था, उनको देखकर के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।
अब हो रहा है प्रज्ञावतार का विस्तार। मित्रों,
मैं सोचता हूँ कि यह वास्तविकता है, सच्चाई है कि भगवान अवतार ले रहे हैं और भगवान के अवतार के साथ साथ बहुत से आदमी, जो मनुष्यों के रूप में, देवताओं के रूप में, छोटे छोटे देवताओं के रूप में, गिलहरियों के रूप में, गिद्धों के रूप में, आप जैसे आदमी लोक कल्याण के लिए, लोकमंगल के लिए अपने आप को खर्च कर डालने के लिए, मिटा डालने के लिए सामने आ जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि किसी भी शक्ति के अवतार के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। व्यक्ति के भीतर, परिवार के भीतर और समाज के भीतर हम प्रज्ञावतार का विस्तार करने जा रहे हैं।
क्रमशः वेदमाता बनने जा रही है विश्वमाता।
पूर्व की दो कड़ियों में आप पढ़ चुके हैं पूज्यवर का एक विशिष्ट प्रवचन।
उसमें उन्हें उदाहरणों के साथ बताया कि जब जब भी असंतुलन हुआ तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ा।
दशावतार में से 9 की व्याख्या करने के बाद उन्हें कहा कि आज की समस्याएं पहले से भी ज्यादा विषम हैं।
आज आदमी का चिंतन विकृत, लोभी लालची हो गया है। हत्यारी, डायन दहेज प्रथा इसका एक स्वरूप है जो बुद्धिवादी युग में भी देखी जा रही है।
इसमें गुरुदेव ने अपने अनुभव हमसे बांटे थे कि किस तरह से परिजनों ने अपनी लड़कियों के बायोडेटा तो आदर्श विवाह के लिए भेज दिए पर लड़कों के अपने पास रख लिए।
उन्होंने कहा कि आज का ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक होता है। उद्विग्नता, तनाव का जीवन जी रहा है आज का मनुष्य। आदमी अविश्वस्त, अप्रामाणिक हो गया है।
आदमी की बेअकली, बहुप्रजनन, जीवन जीने की कला के क्षेत्र में न समझी की उन्हें चर्चा की। फिर कहा कि अगला अवतार ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक के रूप में होने जा रहा है। अवतार समूह मन का प्रतीक होता है। प्रज्ञावतार का ही अब विस्तार होने जा रहा है।
अब आगे पढ़ें। असली गायत्री युग शक्ति है। मित्रों,
मनुष्य के बारे में हम बहुत दिन से आपको यह बताते चले आ रहे हैं कि व्यक्ति को परिष्कृत होना चाहिए। गायत्री के बारे में भी हमने कितनी बार कहा है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है।
आपके पास ब्राह्मणत्वर आएगा तो कामधेनु का दूध भी आपके पास आएगा। ब्राह्मणत्वर अर्थात भलमनसाहत, शराफत, सज्जनता, ईमानदारी, नेकी अगर आपके पास आएगी तो सत्यवान और सावित्री के तरीके से, हंस के तरीके से, जिसकी कहानी कल परसों में सुना चुका हूँ, आप धन्य हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व निर्माण करने के सारे तत्व इस गायत्री उपासना में भरे पड़े हैं।
अगर आप स्वीकार करना चाहें तो, न करना चाहें तो आपकी मर्जी है।
तब फिर आप राम नाम जपना, पराया माल अपना, गायत्री मंत्र का जप करना और पराया माल अपना करते रहिए।
फिर हराम का वरदान पाना, इस देवी से पाना, उस देवता से पाना, कर्मफल के विरुद्ध पाना, फिर तो यह आपकी मर्जी की बात है।
असली गायत्री अगर आपके भीतर आएगी तो सबसे पहले व्यक्ति को महान बनाने के लिए, चरित्रवान व्यक्ति बनाने के लिए काम करने आएगी। कल भी मैं आपको यही बात समझा चुका हूँ।
मनुष्य में देवत्व के उदय का जो सपना हमने देखा था, अगर आप असली गायत्री को अपनाएंगे, जिससे हम युग शक्ति गायत्री कहते हैं, जिससे हम पत्रिकाओं में प्रतिपादित करते रहे हैं और हम अब और जोरों से प्रतिपादित करेंगे कि आदमी का व्यक्तित्व परिष्कृत होना चाहिए।
एक चमत्कार व्यक्तित्व का परिष्कार। मित्रों,
आदमी का व्यक्तित्व परिष्कृत होना अपने आप में चमत्कार है। कितने महापुरुषों की कहानियां और कथाएं हम आपको कितनी बार सुना चुके हैं, वे सब गरीबी की हैसियत में पैदा होने वाले व्यक्ति थे, जो अपने व्यक्तित्व और चरित्र की वजह से कहां जा पहुंचे। असल में आदमी का व्यक्तित्व बढ़िया होना एक चमत्कार है।
बाटा का उदाहरण हमने न जाने कितनों को सुनाया था।
भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में आदमी का व्यक्तित्व शराफत से भरा हुआ होना एक चमत्कार है, एक जादू है।
ऐसे जादू वाले व्यक्तित्व सफल होते चले जाएंगे। बेईमान को सफलता मिलती है, ईमानदार को नहीं मिलती, यह गलत बात है। ईमानदार को सफलता मिलती है, बेईमान को नहीं मिलती। ईमानदारी का मुखौटा उड़ करके, ईमानदारी के नाम पर, ईमानदारी को धोकर के बेईमान आदमी फायदा तो उठा लेता है, लेकिन बेईमान आदमी की बेईमानी जब साबित हो जाती है कि यह बेईमान है, तो फिर वह एक पैसे का फायदा नहीं उठा सकता।
ऐसे आदमी के लिए ठहरना मुश्किल पड़ जाता है। आदमी को पानी पीना मुश्किल पड़ जाएगा अगर यह मालूम पड़ जाए कि यह आदमी बेईमान है। यह ईमानदारी की आड़ में मालदार बन रहा है, ईमानदारी की छाया पकड़कर ऊंचा उठ रहा है। आदमी बेईमान होगा तो जेल चला जाएगा और उसको कोई आदमी अपने पास खड़ा नहीं होने देगा।
मित्रों, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, युग के अनुरूप मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए नए युग की जो ख्वाहिश, जो ख्वाब हमारे हैं, ये सिखाते हैं कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक गायत्री उपासक को इन सिद्धांतों को, इन आचार विचारों को, इन व्यवहारों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
बेटे, मनुष्य में देवत्व का निर्माण करने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए और कुटुंब का निर्माण करने के लिए हमने आपको 3-4 बातें बताई थी।
आपको उसे ध्यान में रखना चाहिए। पूरे परिवार को मिले संस्कार। मित्रों,
व्यक्ति से अब हम परिवार की ओर चलते हैं।
गायत्री उपासना को अभी हमने व्यक्तिगत रूप से बताया था, अब हमारे नए कदम परिवार कल्याण के लिए उठते हैं। गायत्री माता का चित्र घरों में रहना चाहिए। बलिवेश यज्ञ हमारे घरों में रोजाना होना चाहिए। रोजाना सामूहिक आरती होनी चाहिए। रोजाना कथाओं का सिलसिला हमारे घरों में चलना चाहिए। समय समय पर जन्मदिन होना चाहिए।
क्या बात है, हम व्यक्ति से परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप अकेले जप करें और परिवार वालों को न मालूम पड़े, परिवार वालों को गालियां दें, यह हमें नापसंद है।
इसलिए अब हमारे अगले कदम व्यक्ति निर्माण के साथ साथ परिवार निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आपको अब परिवार निर्माण के लिए तैयारी करनी चाहिए।
रजत जयंती वर्ष से हमने यह कदम बढ़ाए हैं।
आपको अकेले तक सीमित रहकर गायत्री उपासक रहना हमको सुहाता नहीं है। आप सारे घर में अकेले गायत्री उपासक हैं।
सारा घर आपका मखौल उड़ाता है। कोई आदमी आपसे सहमत नहीं है।
हर आदमी आपको बेवकूफ बनाता है। बेटे, हमको यह नापसंद है।
हम चाहते हैं कि जिस मुस्ती से आपको समझा दिया गया, उसी मुस्ती से आपके सारे परिवार को भी समझा दिया जाए।
आ रहा है धरती पर स्वर्ग। मित्रों, हम व्यक्ति निर्माण के साथ परिवार निर्माण में युग शक्ति गायत्री का प्रवेश कराने वाले हैं और क्या होने वाला है।
अब बेटे, एक और क्षेत्र में प्रवेश होने वाला है। कौन से वाले में होने वाला है?
सारे विश्व में, जिसमें धरती को स्वर्ग बनाने की योग्यताएं विद्यमान हैं।
धरती पर स्वर्ग का अवतरण हम बार बार करते रहे हैं।
धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकता है? हाँ बेटे,
हो सकता है और होगा। कैसे होगा?
थोड़े से सिद्धांत हमारे पास हैं।
गायत्री मंत्र में बीज रूप में सन्निहित ऐसे सिद्धांतों का विस्तार हो गया और जनता ने, सर्वसाधारण ने, जनमानस ने इसे स्वीकार कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि इस धरती पर स्वर्ग बनकर रहेगा।
गुरुजी,
आपकी प्लानिंग क्या है? बेटे, हमारी प्लानिंग सारे विश्व के लिए है। अतः गायत्री माता इस रजत जयंती वर्ष से नए रूप में प्रकट होने जा रही है।
पहले यह कौन थी? पहले इनका नाम था वेद माता। वेद माता कौन? चारों वेद जिनसे प्रकाशित हुए थे, जिसके व्याख्यान स्वरूप चारों वेद बनाए गए, वह वेद माता थी। वेद माता बन रही विश्व माता। शुरू शुरू में जब गायत्री माता संसार में आई थी, तब उनका नाम था वेद माता।
फिर क्या हो गया?
फिर इनका नाम देवमाता हो गया।
देवमाता कैसे हो गया?
पहले ये ऋषियों के जमाने में केवल सिद्धांत थी, ब्रह्मविद्या थी, तत्वज्ञान थी और फिलॉसफी थी। फिर उसके बाद विस्तार हो गया। लोगों ने अपने जीवन में इसका प्रयोग करना शुरू किया, तो यह भारत भूमि में, जिसमें 33 कोटि देवता रहते थे, नागरिक रहते थे, उन देवताओं को जन्म देने वाली, गुण, कर्म, स्वभाव में देवत्व भरने वाली पहले वाली गायत्री महाशक्ति थी, जिसका नाम था देवमाता।
अब क्या होने वाला है? अब एक और चरण का विकास होने वाला है, प्रज्ञावतार के रूप में, युगशक्ति के रूप में। अब इसका नाम रूप सामने आने वाला है। कौन सा रूप सामने आने वाला है?